फत्तकुल्लाहवातियोनी, डरो अल्लाह से काम मेरा। और यही नबी सल्लम ने कहा, क्यों अल्लाह से डरो? क्योंकि इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, वो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। फाबुदूहु, बस उसी की तुम इबादत करो। हज सिरातुम मुस्तकीम, यही सीधा रास्ता। यही बात आयत 36 में सूरत मरियम में भी कही गई कि सीधे रास्ते पे आ जाओ, सीधा रास्ता है ही ये, क्या कि तुम अल्लाह पे हो। अब आप इस जुमले को देखिए, हजरत ईसा अपना अकीदा क्या बता रहे हैं, हज़ा सिरातुम मुस्तकीम, ये इस्लाम है। हजरत ईसा से लेकर हर नबी, बात वाला, पहले वाला, सबका यही अकीदा था कि एक अल्लाह को मानो। इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फाबुदूहु हज़ा सिरातुम मुस्तकीम, ये सीधा रास्ता है। लेकिन लोग अल्लाह के दीन को बदल लेते हैं बाद में, नतीजा क्या होता है कि वो इन रास्तों को छोड़कर पगडंडियों में पहुंच जाते हैं। तो आप देखिए कि नबियों का अकीदा कितना साफ सुथरा अकीदा होता है, सिराते मुस्तकीम, अल्लाह के अहकामात की पैरवी करना, अल्लाह की मर्जी को चलो। उस दौर में क्रिश्चियनिटी थी सिराते मुस्तकीम, जो कि तौहीद पे थी, और आज के दौर में इस्लाम सीधा रास्ता है। इसलिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इस जुमले पे गौर करके आज के क्रिश्चियंस को भी इस्लाम को स्टडी करने की ज़रूरत है, और मुझे आपको भी ज़रूरत है कि उन तक पहुंचाएं ये बात। तीन बातें आपको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दावत में आम तौर पे दिखेंगी जो हर नबी में थी। पहली बात, अल्लाह की इताअत, इक्तदार आला अल्लाह का है। हम बंदे हैं, बंदगी, यानी हम बंदे, रब वो है जिसकी इबादत की जाए। दूसरी बात, अतियोनी, अल्लाह के नबी की इताअत, उसके हुक्म पे चला जाए। और तीसरी बात, उहिल्ला लकुम, और कौन सी, के हराम और हलाल का इख्तियार अल्लाह के हाथ में। इंसान क्या खाए, क्या ना खाए, क्या करे, क्या ना करे, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास इख्तियार है, नबी के पास भी नहीं। सूरह तहरीम पूरी इसी मौजू पे चलती है कि अल्लाह के नबी ने अपनी बीवियों की खुशी के लिए शहद को खुद पे हराम किया, तो अल्लाह ताला ने आयतें नाजिल कर दी, लिमा तो हर रिमो मा हल्लल्लाहु लक, ए नबी ये कैसे हो सकता है कि जो अल्लाह ने कहा कि हलाल है वो आप हराम कर दें। किसी को नहीं पसंद वो ना खाए, लेकिन ये नहीं कह सकता कि मैं खा नहीं सकता और मैं खाता नहीं हूँ। तो अल्लाह सुबहान तआला के इस पैगाम को आज आम करने की ज़रूरत है, और इसी के दलाइल आज इनकी किताबों में भी मिलते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बहुत सारे अकवाल हैं कि जिसमें उन्होंने तौहीद का और रबूबियत का तज़किरा किया है और ख़ुद को अल्लाह का बंदा कहा। अब इसके बाद आप देखिए कि यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी मिल गई, बात ख़त्म। बज़ाहर तो ये मैसेज किसको मिल रहा था, हज़रत मरियम को। अब हम होते फिर कहते अच्छा फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो जिसको इसके बाद का पढ़ना है वो सूरत मरियम का इब्तदाई दौर को पढ़ ले, पूरी विलादत का तज़किरा है हज़रत ईसा की। लेकिन यहाँ ऐसे लगता है कि एकदम सीन पलटता है और अल्लाह सुबहाना ताला दूसरे मंजर पे ले जाते हैं। पहले आयतें पढ़ के एक मौजू की फिर इसका बैकग्राउंड लेंगे। फरमाया आयत 52, फलम अहस्सा ईसा मिनहुमुल कुफ्र, फिर जब ईसा अलैहि सलाम ने इनकी तरफ से कुफर को भांप लिया। अहस्सा के, जिसको उर्दू में आप महसूस कहते हैं, हिस, यानी जब हजरत ईसा ने उन लोगों में कुफर देखा, काल मन अंसारी इल्लल्लाह, तो उन्होंने पुकार लगाई कौन है मेरा मददगार अल्लाह के रास्ते में। अब आप देखिए कि यहाँ वो बीच के सारे मंजर ड्रॉप किए गए कि हज़रत ईसा नबी बने, बनी इसराइल को दावत दी, हज़रत ईसा ने अब कई साल तक तबलीग की, लेकिन इनकी दावत से जब उलमाए यहूद को ख़तरा लग गया कि अब हमारी बड़ाई ख़त्म हो जाएगी, जो हमने दीन के ऊपर एक अपना कब्ज़ा किया हुआ था वो ख़त्म हो जाएगा, उन्होंने हज़रत ईसा की मुखालफत शुरू कर दी। उस वक़्त तक यहूदियों पर उनके उलमा का असर व रसूख बहुत ज़्यादा था, फिर जब आपने इनकी तरफ से कुफर की शिद्दत महसूस की कि ये ज़िद पे आ गए, मुखालफत पे तुल गए, तो फिर आपने पुकार लगाई मन अंसारी इल्लल्लाह, कौन है जो अल्लाह के रास्ते में मेरा मददगार होगा। आप सोचिए ज़रा कि ये कितनी बड़ी पुकार है, अल्लाह के रास्ते में मेरा मददगार। इस जुमले को देखिए ना, मन अंसारी इलल्लाह, ये नहीं कहा कि मन अंसारी इला दीन इल्ला, ये नहीं कहा, इलल्लाह, अल्लाह के रास्ते में कौन है जो मेरी मदद करेगा। क्योंकि अब हज़रत ईसा को ये बात समझ आ रही थी कि अब बात बिगड़ने वाली है, और हमेशा ऐसे ही होता है, जिसने वक्त के रिवाज से टक्कर ली और खास तौर पे दीनदारों के ऊपर तनकीद हुई, तो दीनदार तो आपको पता है फिर जब बोलने पे आते हैं तो वो देखे सोचते भी नहीं है कि किसको हमारे चेहरे के तासरात से क्या दिख रहा है, गुस्से में और घबराहट में। आप किसी सोसाइटी में गुनाहों पे तनकीद करें, कभी आपके खिलाफ लोग बातें नहीं करेंगे। नमाज पे बात करें, कोई आपके बात तरीके पे तो बातें करते हैं लेकिन नमाज पढ़ा करो बहुत खुश होते हैं सब दीनदार है। आप पर्दे की बातें करें, फैशन की बातों पे तन कभी कोई आपके खिलाफ मुखालफत नहीं करेगा। लेकिन दो मौजू ऐसे हैं जिस दिन आप इस बंद कमरे में बात करेंगे ना, तो शहर में कहीं ना कहीं किसी जगह आपके खिलाफ कमेंट जरूर जाएगा। उसमें एक फिरकावारियत की बात है, किस कुरान को मानो हदीस को मानो, और दूसरी बात यह जिसका इधर तस्कर है कि दीन के नाम पे जब लोग कुछ शिद्दतें इख्तियार कर चुके होते हैं, कुरान पढ़ते हैं आपको कोई शिद्दत नहीं दिखती। अभी आपने किताबो तहारा शुरू की है ना, खुद ही पढ़ेंगे, जब आप यहाँ से हदीसें पढ़ के जाएंगे आप कहेंगे अच्छा मेरी अम्मा तो ये कहती थी, वो हमारे मौलवी साहब तो ये कहते थे, फिर मसले लेके लोग खड़े होते हैं। तो इन दो मसलों पे आपके खिलाफ मुखालफत जरूर होगी। ये कुरान और सुन्नत पढ़ाने वालों को सहनी पड़ी, चाहे वो इमाम अहमद थे या इमाम इब्ने तैमिया थे या इमाम अबू हनीफा रहमहुल्ला थे, ये चलते ही रहा दौर से दौर। तो यही मुखालफत हजरत ईसा के साथ हुई। हजरत ईसा को समझ आ रहा था कि अब दो गिरोहों में कम्युनिटी बटेगी, एक हिजबुल्ला है और एक हिजबु शैतान है। जो अल्लाह के रास्ते में निकलेगा वो अल्लाह का बंदा बन जाएगा, दूसरा दूसरी तरफ है। तो गोया के यहाँ वही बात है कि अकेले उठे थे लेकिन साथियों की जरूरत थी। हजरत ईसा ने कहा कि मुझे बताओ कि मेरा इस रास्ते में कौन काम करेगा, क्योंकि हजरत ईसा का साथ देने वाले जो लोग थे उनको भी पता था कि हम ईसा का साथ नहीं दे रहे, हमारी कॉज अल्लाह है और हम अल्लाह की मखलूक के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए कालल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह, हवारियों ने कहा कि हम हैं अल्लाह के मददगार। जरा ऊपर वाले जुमले के टैली करें इसको, ईसा का जुमला मन अंसारी इल्लाह, री मेरा, लेकिन साथियों ने मेरी का लफ्ज नहीं बोला, ये नहीं कहा कि नहनु अंसारु का फिल्ला, हम आपके मददगार हैं अल्लाह के रास्ते में, कहा नहीं हमारा आपसे ताल्लुक नहीं, हम तो अल्लाह के लिए करते हैं, हम अल्लाह के मददगार हैं। ये है वो स्पिरिट जो लोगों से काम कराती है। आप देखिए आज के दौर में बड़ी बड़ी कंपनीज फॉर्म्स है ना, जो वो अपने एम्प्लॉयज के अंदर ये स्पिरिट नहीं ला पा रही कि हम अपने एम्प्लॉयज और अपने वॉलंटियर्स को कैसे मोटिवेट करें कि ये अपना काम समझ के इस काम को करें। पे बढ़ा दो तो करते हैं, ये जो आपको यहाँ अप्रिसिएशन नहीं दी जाती ना, मुझे बहुत अच्छी तरह तो पता है कि हम नहीं देते आपको, नहीं हम किसी को भी नहीं देते, बस तारीफ और दुआ, हल्की सी बात और दुआ, दैट्स इट। बहुत दिल चाह रहा होता है, कहीं यकीन करें बात साथियों के इतने अच्छे अच्छे काम होते हैं ऑनलाइन पे भी ऑन साइट पे भी, दिल कहता है। लेकिन फिर मुझे हदीस याद आती है कि अल्लाह के नबी ने कभी किसी की चापलूसी नहीं की थी। हदीस में आता है जिसकी मुंह पे तारीफ कर दी अपने उसको कुंजरी से काट दिया, उसके तो रास्ते बंद हो गए, वो कहेगा देखा बस मैं हूं ना कितना अच्छा काम किया, किया अल्लाह के लिए किया ना। मुझे ये बात एक आलिम से बहुत अच्छी तरह मैंने सीखी, जब मेरे वालिद की सडन डेथ हुई तो फितरी तौर पे बंदा शौक में होता है, उसके कुछ अरसे के बाद मुझे जब मिले अंकल तो मैंने ऐसे उनसे पूछा कि मैं जो भी कोई काम करती हूँ, पढ़ती हूँ, पढ़ाती हूँ या कुछ भी मैं अब्बू के लिए करूँ तो अब्बू को पता चलता है, यानी ख्वाहिश होती है ना कि अब्बू को पता चल जाए। तो फिर उन्होंने कहा कि बेटा इससे क्या फर्क पड़ता है कि अब्बू को पता चलता है कि नहीं, लेकिन तुम ये यकीन रखो कि उनको फायदा होता है। यानी उन्होंने मुझे इतने प्यार से ये बात समझा दी कि अब्बू को क्योंकि दिखाती हो, अल्लाह को दिखाओ। फिर उसके बाद मैंने नहीं कभी सोचा कि अब्बू को पता चले मैं आज लंदन में हूँ और आज मैं किधर हूँ और मेरे से क्या हो रहा है, हम वो भी नहीं देखना चाहते कि मेरी किस दिन नमाज छूट गई और अब्बू को पता चले। अल्लाह अंसारु अल्लाह की तरफ, तो हमेशा याद रखिए लोगों को वडियाया ना करें। जब आप सोचते हैं फितरी तौर पर होता है बात, स्टूडेंट्स अभी तो बहुत स्टूडेंट्स तो बेचारे बच्चे होते हैं, उनका दिल करता है कि हमारी चीज सबकी नजर में आ जाए, उस्तादों की नजर में आ जाए, खुद ही आ जाएगी। आप अल्लाह के लिए कर दें, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि किसी और को दिखाएं। बिल्कुल मुझे ऐसे फील हो रहा है कि जैसे कोई डिजाइनर है खूब कपड़े बना रही है, क्यों? क्योंकि उन्होंने एक नुमाइश लगानी है, कोई एग्जीबिशन है, तो क्या एग्जीबिशन से पहले सारे कपड़े लोगों को दिखा देती हैं? लोग तो छुपा छुपा के रखते हैं, शीशों पे पर्दे लगा देते हैं, क्यों? आखिरी दिन खोलेंगे, एग्जीबिशन है आज, अचानक नई चीज डिस्प्ले। तो एग्जीबिशन तो होना है इंशाल्लाह, आखिरत में होना ना, तो आज क्यों फिक्र करें। तो इसलिए नहनु अंसारुल्लाह, ये है वो स्लोगन जो लोगों को काम करने पे लाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज़ में इतनी खुशकिस्मत अपने आप को महसूस करती हूँ कि मेरा सर सजदे में रहे तो मैं हक नहीं अदा कर सकती, कि जब से ये सफ़र शुरू किया है आज तक जहाँ भी कदम गए हैं साथी बड़े प्यारे मिले हैं, एक से एक भड़के, एक से एक भड़के। और अक्सर मैं उनसे यही पूछती हूँ, इस दफ़ा मैं गई नॉर्वे तो जैसे मैं जाती हूँ तो फिर साथी भी मिलते हैं और साथियों के पास आने वाले भी मिलते हैं, मुझे लोग उनकी शिकायतें भी लगाते हैं, जैसे आपको बताइए कि आदत होती है लोगों की, और कुछ लाड में कुछ मोहब्बत में। तो एक हमारी साथी थी तो कहने लगी कि जिस दिन आपने आना था उससे एक दिन पहले मैं स्कूल गई तो मुझे कुछ चाहिए था कोई काम लेना, तो मैंने देखा तो वो जो भी सिस्टर थी, नाम नहीं मैं लेती, तो कहती वो बड़ी घबराई फिर रही, काम हो रहे हैं सब ये कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि सिस्टर मुझे ये हेल्प चाहिए, तो उन्होंने कहा कि प्लीज़ आज हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा आपको पता हम अल्लाह से इतना नहीं डरते जितने हम अपनी उस्ताजा से डरते हैं। अब वो मुझे प्यार से सुना रही है, मेरा तो अंदर से यूं हो गया हाल, ये अल्लाह से ज्यादा मुझसे डरते हैं। खैर मैं पी गई, मैंने उनको कहा नहीं वो ऐसी बात नहीं, कहती नहीं नहीं वो बहुत अच्छी लगी। मैंने उनको कहा कि लाएं फिर मैं आपकी कुछ मदद कर दूं, उनको ये था कि मन हमने भी काम करने हैं। फिर बाद में मैंने ये जुमला लेकर तो फिर जो हमारे स्टाफ की मीटिंग थी फिर मैंने उसमें शेयर किया, तो जिन्होंने कहा हुआ था वो हंस रही, उनको पता, कहती नहीं सजा हमें पता कि हम अल्लाह से डरते हैं, लेकिन हमारे पास वक्त थोड़ा था, तो वो साथी भी अपनी ही थी, कोई बाहर का होता तो शायद वो उनको टैकल करती। तो हकीकत है हम मोहब्बत तो करते हैं, ख्याल तो करते हैं, लेकिन मैंने ये देखा कि अल्लाह के लिए काम करने वाले वाकई अल्लाह के लिए करते हैं। और माशाल्लाह मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था अब ये लॉन्ग ट्रिप के बाद वहां जाने का, तो मैं जितने भी दिन रही मैं यही देखती और सोचती रही कि क्या ये काम मेरे लिए हो रहा है या अल्लाह के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह दिल की गहराई से सुकून का एहसास हुआ, दिल की गहराई से। बल्कि मैंने जब वापसी पे मेरे पास जहाज में नेट भी था तो मैं जिनको भी लिखती अपने उस्तादों को भी माँ बाप जिनको भी, तो मैं यही लिख रही थी कि आज वापस आते हुए मुझे एहसास हो रहा है कि क्यों अल्लाह ताला ने अपने नबी को बस मक्का और मदीना ही को फतह करा के दुनिया में बुला लिया कि बाकी काम साथियों से करवाना था। ये जो मुल्कों में गई सल्तनत, ये उम्र क्या तो गई, तो मैं कहा आज मैं नॉर्वे से इन्हीं फीलिंग्स के साथ आ रही हूँ कि मैं नहीं समझती कि मैं इस काबिल हूँ कि मेरे होने से काम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह कई नई चीज़ें मेरे पास शुरू हुई, मुझे पता भी होता है, मेरे पास रिपोर्ट भी होती है, मशवरा भी होता है, खुद कुछ नहीं करते लेकिन करते सब वो हैं, इनिशिएटिव होना, दिमाग चलाए बंदा क्या कर सकता हूँ क्या नहीं, कितने नए प्रोजेक्ट क्या करें ऐसा करें। बच्चों की क्लासें शुरू हुई माशाल्लाह, जब से अल्लाह ताला ने हमें ये जगह दी इसमें बड़ी खैर है। मैं हैरान हूँ, यकीन करें कि जो हमने सोचा था ना अल्लाह ताला ने उससे भी बड़ी चीज़ें हमसे ली वहाँ। और कमियाँ तो अभी भी बहुत हैं, कोई नहीं कहता कि कमी से बगैर है, ये तो कभी भी नहीं होगा, लेकिन कम अज़ कम ये एहसास है कि हमने अल्लाह के लिए करना है। और जब नॉर्वे के बाद अब इधर की तरफ उनकी इंटरेस्ट हुआ तो वो यही कहते हैं कि सहसा हमें कोई फ़र्क नहीं लगता, हम आपको याद तो करते हैं लेकिन हमें ये पता है कि आप हमारा काम उधर कर रही हैं क्योंकि हमने वहां पहुंचना है, हम सब अल्लाह के रास्ते के राही हैं ना, हमें वहां से भी उतनी मोहब्बत है जितनी हमें नॉर्वे से है। लेकिन अगर आप सोचिए जरा, इजारादारियां होती, कबीला सिस्टम होता, आज तक मैं कह सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह नजर से और हसद से बचाए हमारे काम करने वाले साथी सारे जितने भी हैं। सिर्फ 23 लोग थे जिस दिन हमारे इस कोर्स की मीटिंग हुई थी ऑनलाइन की, जो आपके इस ऑनलाइन कोर्स को मैनेज करते हैं। मैं उस नंबर को देख रही थी कि कभी तो हमारी स्टूडेंट्स का ये नंबर होता था, इतने भी नहीं होते थे जब काम शुरू किया था, सिर्फ स्टाफ 23 लोगों के साथ थे जिसमें कि कैसे कोर्स मैनेज किए जाते हैं। ये तो अब ऑन साइट है, ऑनलाइन पे और भी काम होते हैं, लेकिन कभी कभी दो के बीच में ये नहीं गड़बड़ आई कि इसने मुझे पीछे कर दिया उसने आगे कर दिया। इंसान होने के नाते कभी बुरा लग सकता है, मेरे से माइक ले लिया या मुझे कहा था, इट्स पॉसिबल, लेकिन कभी दिल नहीं बुरे हुए, आगे नहीं बढ़ना, कोई लेग पुलिंग नहीं, और ये भी नहीं कि मेरा शो ऑफ हो जाए कि मुझे आगे कर दो बस मुझे माइक पकड़ा दो। मैं कहती हूँ जो माइक पे आके बोलते हैं वो तो बड़ा खतरे में है, एक गलत जुमला बोल गया कितने गुना मल्टीपल होगा, जो पीछे बैठा बेचारा बैठा जिसको कोई जानता ही नहीं वो अपने काम कर रहा है। तो याद रखिए ये स्पिरिट कि नहनु अंसारुल्लाह, ये आपने भी अपने अंदर लानी है। जिस दिन आपको इसका यकीन हो गया ना कि आप इधर अब अल्लाह के नुमाइंदे हैं, तो आप देखिएगा इस शहर का मुकद्दर बदलने लग जाएगा। जब बंदा ये करता है कि आओ मैं अल्लाह का बंदा बनो, अल्लाह की देखिए कितनी बड़ी कॉज है। मैं तो कहती हूँ अल्लाह अगर तूने मौत रखी हुई है तो थोड़ी डिले कर दे, मर के क्या करना है, कब्र में चले गए तुझे क्या फर्क पड़ना है, और हमने क्या कर लेना, कुछ अगर किसी तक पहुंच सकते हैं, कोई खैर ले सकते हैं दे सकते हैं तो अल्लाह देने दे, क्या बड़ी बात है। आज हम इस दुनिया में अपना कहीं ठप्पा लगा दें, एक बीज डाल जाए, रास्ता दिखा दें, काम तो लोगों ने खुद करना है। तो अल्लाह का शुक्र है कि जितनी भी दिन मैं वहां रही, मैंने दिन रात यूज किया। मेरी ख्वाहिश होती, मैं खुद कह देती हूँ वहां हमारी क्लास होती है तो शाम को वहां हम जाएंगे, या पहले से पता है। मुझे ये अच्छा लगता है कि लोग काम करें और बस मैं उनको देखूँ। मुझे जाके बोलने का भी नहीं शौक होता। मैं कहती हूँ आप अपनी वैसी क्लास करें जैसी करते हैं, मैं देखूंगी। तो वो उनको होता है कि आपके सामने तो हम कर ही नहीं सकते। तो फिर इसका देखे मैं नहीं होती आपके सामने तो आप करें। लेकिन हम सब इंसान है ना, फिर इतनी मजे की बात नहीं, आपस में प्यार कैसा बनता है। मैं कहती हूँ क्या सगी बहनों का प्यार होगा जो दीन का काम करने वालों में प्यार होता है इस तरीके से। ये सेल्फ मोटिवेशन है। पूरी दुनिया एक कुंभ है, हर जगह जहां जाते हैं वापसी पे लोग उदास होते हैं, और हम जहां आगे जाना होता है वो लोग खुश होते हैं। मैं सोचती हूँ अल्लाह तेरा काम करके बंदा एक ग्लोबल फैमिली में आता है, इधर उधर जहां जाए वो खुश हो रहे हैं, दूसरे उदास हैं। फिर वो कहते हैं हम इसलिए खुश हैं कि चले कोई बात नहीं लंदन वाले खुश हैं। आप सोचिए ना, ये कोई फीलिंग्स दे सकता है किसी को? आप मुझे क्या देंगे या मैं आपको क्या दे सकती हूँ? हमारे पास तो कुछ है ही नहीं एक दूसरे को देने को। ये सिर्फ एक कॉज है कि इतने छोटे वजूद को अल्लाह ने इतने बड़े काम के लिए चुन लिया। और मैं कहती हूँ बंदा अपनी हस्ती को डुबो के खत्म करके ना अल्लाह का बंदा बन जाए, अल्लाह के रस्तों में निकलें, फिर देखें आपको सच्ची खुशियां प्यार। हम दुनिया में जो कुछ भी करते हैं, अच्छा पहनते हैं, ओढ़ते हैं, दावते हैं, करते हैं, कराते हैं, घर से जाते हैं, वजह यही होती है ना कि लोगों की मोहब्बतें मिले, माने के ना माने। अप्रिसिएशन कह लें, मोहब्बत कह लें, लोगों में हमारी खूबी हो, लोग हमसे खुश हों, हमारे घर आए, हम उनकी खातर करें बजाएं। आप ये सब कुछ बगैर किए अल्लाह का काम करें, अल्लाह लोगों के दिलों में आपके लिए ये डाल देगा और आसानी कंधे हल्के आपके। तो हजरत ईसा के ये जुमले ने उन लोगों को हकीकत में बहुत कुछ करने को सिखा दिया। और सवाल पैदा होता है कि ये लोग हवारी क्यों कहलाए? यहाँ थोड़ी सी बात इस पे कर लेते हैं कि हजरत ईसा अलैहि सलाम के साथियों का लकब हवारी है क्यों? ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे नबी सल्लम के साथियों का लकब सहाबी है, ठीक है, हौर से है। हौर कहते हैं सुफेदी को। ये जो लफ्ज हूर है ना, जिनसे हम मुसलमान औरतें नाराज होती हैं, वो भी इसी से ही है। गोरी औरत को कहते हैं वो हूरें जो होंगी ना, उनकी ये आंख का जो अंदर सफेद हिस्सा होता है ना, ये बहुत गोरा होगा। ये आप पढ़ेंगे कुरान में आगे जाके, अल्लाह ताला कहते हैं कि हम उनको बड़ी बड़ी आंखों वाली औरतों से ब्याह देंगे, ठीक है। तो वो गोरे क्यों हैं? कहते हैं कि ये धोबी थे। अब यहाँ फिर देख लें, धोबी कपड़े साफ करते थे, कहते हैं इसलिए इनको हवारी कहते थे। दूसरी वजह इनको हवारी कहने की जो किताबों में आती है वो क्या है कि ये साफ दिल लोग थे। और मुझे ये मानी बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मुझे ये पता है कि अल्लाह अपने काम के लिए साफ दिल लोगों को चुनता है। तकब्बुर से पाक, तसन्नो से पाक, रियाकारी से पाक, दिखावे से पाक, साफ दिल लोग थे, बिल्कुल इनके दिल साफ थे। कहते हैं कि ये मछेरे भी थे। बास कहते हैं कि जैसे मछलियां पकड़ने का काम था इनका और वहां ये लोग मौजूद थे, लेकिन ये पता चलता है कि ये गरीब लोग थे। अल्लाह के नबी ने अपने एक सहाबी को भी कहा था कि तुम मेरे हवारी हो। कौन से? ये अब आप ढूंढ के लाए, बताया हुआ पहले आपको हवारी रसूल किनका लकब है। किसी को भी पता है तो यही मामला साफ करते हैं, ऐसे इन बेचारों को घर जाके पढ़ना पड़ेगा। जी हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हु नबी सल्लम के फूफीजाद थे। लेकिन याद रखे कि उनको ये लकब फूफो का बेटा होने की वजह से नहीं मिला था, कुछ किया था उन्होंने तो मिला था। तो अल्लाह ताला जिस तरीके से ये सारी बातें पेश करता है, हम सबको भी अपने अमल को देखने की कोशिश करनी है इसमें। और उन्होंने क्या कहा? आमन्ना बिल्ला, हम ईमान लाए अल्लाह पे। ये है मोटिवेटिंग फैक्टर, अल्लाह पे ईमान। देखिए सबसे बिग मोटिवेशन फोर्स ईमान है, तकवा। जैसे गाड़ी का इंजन है ना, इंजन में आप देखिए पानी है, स्टीम से चलती है ना गाड़ियां, ट्रेन, तो वो इंजन को खींचता है पानी। अल्लाह के ऊपर ईमान, मेरा एक एक मिनट जाया नहीं हो रहा, मेरा एक एक कतरा भी इस रस्ते में लग रहा है तो अल्लाह के यहाँ डिपॉजिट है, वो अल्लाह की तरफ से बंदे को खींचता है। ये भी मुझे सुबह किरम ने लिफाफा दिया, मैंने इन्हें कहा कि ये आप नादिया को दे दें, स्कूल के लिए आ रहे जो भी हैं। तो इन्होंने कहा नहीं उस्ताजा, ये हमारे एक यंग स्टूडेंट की तरफ से है जिसने बड़ी मोहब्बत से बिल्डिंग फंड के लिए पैसे दिए हैं। अब आप देखिए इसमें क्या है, हु केयर्स, कितना है, उससे क्या बनेगा, किसी को इसकी परवाह? क्या अल्लाह को इस लिफाफे की जरूरत है? लेकिन एक यंग स्टूडेंट सोचता है कि मुझे अल्लाह के रास्ते में मददगार बनना है, बस अल्लाह को तो ये चाहिए। तो तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से अल्लाह का बनने वालों में बच्चे बड़े बराबर सबको एक तड़प है कि आमन्ना बिल्ला वशहद भी अन्ना मुस्लिमों। ये दूसरी चीज है। अब यहां भी आप एक बारीक नुक्ता देख लें, आमन्ना बिल्ला और बाद में भी अन्ना मुस्लिमों, ये क्या बात है भाई? क्या ये दो मुख्तलिफ टर्म्स हैं, ईमान और इस्लाम, मोमिन और मुस्लिम? तो फर्क लिख लीजिए कि आमन्ना बिल्ला दिल की कैफियत। अब दिल में अल्लाह बड़ा हो गया माशाल्लाह, अब अल्लाह अच्छा लगता है, अब अल्लाह से प्यार है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्य अल कय्यूम अल मलिक अल कुद्दूस अल मालिक अल मुल्की तू तिल, अल्लाह की बड़ाइयां आ गई हैं, लेकिन बात नहीं पूरी हुई जब तक वशहद बी अन्ना मुस्लिमून नहीं होगा। मुसलमान इस्लाम जिस्म की कैफियत का नाम है, हाथ मुसलमान नहीं होते, कान आंखें दिल दिमाग में इतात नहीं आती। यानी आमन्ना बिल्ला क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, तो भी अन्ना मुस्लिमून क्या है कि उसके तकाजे अब इस जिस्म पे लगाने हैं। और ये चाहिए, इस्लाम अल्लाह की आगे झुकने का नाम है। और यहाँ ये बात भी नोट कीजिएगा कि साथियों ने, ये कौन है? हजरत ईसा के साथी। सबसे ज्यादा तो इनको ईसाई होने का हक है ना, समझिएगा ये बड़ा बारीक नुक्ता है। हजरत ईसा के सामने मौजूद लोग खुद को क्या कह रहे हैं? बी अन्ना मुस्लिमून। क्या कहना चाहिए था? बी अन्ना ईसाईयून। हम ईसाई हैं, हम मसीही हैं, हम नसारा हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम कैथोलिक्स हैं। क्या कह रहे हैं? मुस्लिमून। ये बिल्कुल वही बात है अगर आप तकाबुल करें कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में सहाबा ने कभी खुद को हनफी, ब्रेलवी, शाफी, मालकी, अहले फलां और अहल फलानी का वो क्या कहते थे? मुसलमान है। हर दौर में यही था। ये बाद में बिगाड़ शुरू होता है जो आज अपनी हद को पहुंचा हुआ है। आयत 53, रब्बना आमन्ना बिमा अनज़लता। ए मालिक, जो फरमान तूने नाजिल किया हमने इसको मान लिया, ये पहला दर्जा। वत्तबाना रसूल, और रसूल की पैरवी की, ये दूसरा दर्जा। रसूल की पैरवी के बगैर ईमान का दावा झूठा फरेब है, जिसको आप कह सकते हैं कि खुद को धोखा देना है कि हम इस पर ईमान ले आए और फिर उसके तकाजे ना पूरे करें, नामुमकिन बात है। फक्तुबनामा शाहिदीन, बस तू हमको गवाहों में लिख ले, हमारा नाम गवाहों में लिख ले। ये शाहिदीन कौन है? एक तो आम मानिए ना, शाहिदीन गवाही देने वाले, लेकिन गवाह पता आपको किसका लकब है? पिछली किताबों में सहाबा कराम का लकब शाहिदीन था, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लम का मुशाहिदा किया था। तो एक तफसीर इसकी ये भी की जाती है कि हजरत ईसा के साथियों ने ख्वाहिश की थी कि उनको भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी बना दें, ये ख्वाहिश थी। क्या आने वाले नबी की गवाही देते हैं? देखिए, ये कोई आज हमें सुन के हाहू होता है ना, हाय ये कैसे मुमकिन है, लेकिन ये हाहू नहीं था। हजरत ईसा ने दावत ही ये दी थी कि लोगों, हम सब एक नबी का इंतजार कर रहे हैं, जब वो आएगा तो हम उसका साथ देंगे। जैसे हम आज किसी से दीन के नाम पे प्यार करें तो आपको कहा जाए अच्छा वो आएंगे इधर तो हम सब उनको मानेंगे, तो खुशी होगी ना। ये तो आज नसारा ने हजरत नबी सल्लम को नहीं माना, हजरत ईसा के दौर तक के जो नसारा थे वो तो अल्लाह के नबी का इंतजार कर रहे थे। तो उन्होंने भी कह दिया कि हम जरूर ऐसे करेंगे, और ख्वाहिश का इजहार भी किया कि हम मानेंगे और उसकी बात का मानेंगे। और उम्मत मुस्लिमा का टाइटल शाहिदीन भी है, सहाबा का हो या उम्मत मुस्लिमा का हो, ये सब एक ही बात है। तो पता क्या चला कि दीन का काम करने के लिए भी मददगारों की जरूरत होती है। काम तो अल्लाह ही करता है, लेकिन अल्लाह लोगों को नेकियों के मौके देता है। अल्लाह अकेले मूसा से और ईसा से और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन को गालिब कर सकता था, एक कुन होता फयकुन, लेकिन नहीं किया। क्यों? अल्लाह ताला लोगों के नसीब जगवाता है और चाहता है कि ये लोग कुछ अपना खैर का हिस्सा डाल लें। बहरहाल, अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये कोशिशें कर ली पहले से। इससे ये भी पता चलता है कि अच्छे लीडर वक्त से पहले साथियों को तैयार कर देते हैं कि ये काम आ रहा है और इसके लिए तैयार हो जाओ। अब है वो साजिश जिसका तذکرہ, और ये आखिरी टॉपिक फिर आखिर तक चलेगा, व मकरू व मकरुल्लाह। फिर बनी इसराइल हजरत ईसा के खिलाफ खुफिया साजिशें करने लगे, और जवाब में अल्लाह ने भी अपनी खुफिया तदबीर की। क्यों? वल्लाहु खैरुल माकिरीन, क्योंकि अल्लाह ताला तो ऐसी तदबीरों में सबसे बढ़कर है। ये क्या मकर था, किसने किसके खिलाफ क्या किया, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। पीछे इशारा मैंने कर दिया था, लेकिन इस आयत के इंतजार में कुछ चीजें रुकी हुई थी। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने असल दीन लोगों के सामने खोला, तो उस दौर के जो यहूदी उलमा थे वो उनसे नाराज हुए। इस वजह से वो हजरत ईसा के ऊपर इल्जाम भी लगाने लगे कि हजरत ईसा ने हमारे दीन को बदल दिया और दिस एंड दैट। लेकिन उस वक्त तो वो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं कर सके जब हजरत ईसा ने उन पर बराह रास्त तनकीद की। वो तनकीद कहते, ये तो हम पढ़ेंगे सूरत मायदा में, लेकिन उसका खुलासा बता देती हूँ कि यहूदी उलमा ने सूद का काम शुरू कर दिया था, लोगों से पैसे लेते देते, और जुल्म की हद ये थी कि उन्होंने बैतुल मकदस में बैठ के ये काम शुरू कर दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब खबर मिली तो ये वहां गए और उन्होंने उनको एक बड़ा बलीग खुतबा दिया, बड़ा पुरअसर, कि तुमने अल्लाह के घर को चोरों का भट्ट बना लिया। वो सूद जिसको अल्लाह ने हराम किया तुम उसको हलाल करते हो। जब यहूदी उलमा के खिलाफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बात सीधी हुई तो उन्होंने क्या सोचा कि चलो खत्म करते हैं इनको, ही खत्म करिए। जो मकर हुए ना, ये उलमा यहूद का मकर था। आम लोग नहीं कुछ करते, दीनदार ही दूसरे दीनदार के खिलाफ बातें करके छुपाते और छुपाते हैं। लिहाजा इन्होंने क्या किया, कोई ऐसा इल्जाम हजरत ईसा पे साबित कर दें कि ये कानून की गिरफ्त में आ जाए, जैसे आप कह लें कि इनको सियासी तौर पे कैद करवा दें। चुनाचे उन्होंने ऐसा काम किया, उन्होंने पहले तो इनको मुर्तद करार दिया, वाजिबुल कत्ल करार दिया, क्योंकि ये दीन को बदल रहे हैं। उनका तो दीन वाकई बदला जा रहा था ना, लेकिन असल दीन तो खुल रहा था। और रोमन गवर्नर था, आप देखिए उस वक्त रूमियों का कब्जा था, और ये चाहते थे कि उसी तरह से किसी के साथ पकड़ के हजरत ईसा अलैहि इस्लाम को मरवा दें। तो एक रूमी गवर्नर को इन्होंने अपने साथ में लाया कि जब तक वो कह देगा तो हजरत ईसा को सूली पे चढ़ा देंगे। मुल्क का बादशाह यहूदी था, उधर से हुकूमत जो थी वो मिस्र के साथ भी थी, यानी एक सियासी तारीख है इसमें जिसकी इस वक्त जरूरत नहीं इतनी। लेकिन हुआ क्या कि इन्होंने किसी भी तरह हुकूमत पे प्रेशर डाल के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे चढ़ाने का फैसला ले लिया। ये बिल्कुल ऐसे जैसे आज के दौर में किसी हक बात कहने वाले को सिर्फ इसलिए सूली पे चढ़ा दिया जाए कि वो टेररिज्म फैलाता है, मिसाल है, या वो फलां गिरोह को प्रमोट करता है। और ये बातें आज कोई नई नहीं है, ना इसकी जिक्र की जरूरत है, लेकिन ये हकीकत है। बिल्कुल इसी तरह से उन्होंने क्या किया, और कहते थे कि हुकूमत को एक्सप्लॉयट करते थे कि ये लोगों को हुकूमत के खिलाफ करता है। आज भी आप देखेंगे सच्ची तबलीग करने वाले हुकूमत को कुछ नहीं कह रहे होते, लेकिन उस सच्ची दावत का असर हुकूमत पे पड़ना होता है, इसलिए लोग इस तरह की बातें करते हैं। अब इन्होंने क्या किया, कैसे किया, इन्होंने मकर क्या किया कि हजरत ईसा को मरवा दें। अल्लाह कहते हैं वो मकर हुआ और अल्लाह ताला खैरुल माकरीन है। अब इसकी डिटेल्स ज़ाहिर है कि हमारे पास कुरान सुन्नत में तो नहीं मिलेंगी, लेकिन अगर आप इंजील बरनबास, जिसका मैंने पीछे भी तذکرہ किया था, उसका तर्जमा खोल लें, तो उसमें जो हजरत ईसा की ये इस वक्त की जो कहानी मिलती है ना, वो कहते हैं कि हजरत ईसा के हवारियों में से एक हवारी थे जिनका नाम था यहूदा। इनको यहूद ने रिश्वत देकर इस बात पर राजी कर लिया कि आपकी मुखबरी करके गिरफ्तार करा दें, यानी किसी को घर से ही पकड़ा के तुम इसके खिलाफ हो जाओ। अल्लाह सुबहाना ताला ने उस गद्दार हवारी की शक्ल हजरत ईसा की बदल दी। जब लोग आए तो लोगों ने उसको पकड़ के हजरत ईसा समझ के गिरफ्तार किया और सूली पे चढ़ा दिया, और हजरत ईसा को वो पकड़ ही ना सके। कहते हैं कि हजरत ईसा जो थे वो एक बाग में छुपे हुए थे, और बाग के अंदर बनी हुई एक कोठरी में रात के वक्त अपनी इबादत में मशगूल थे। यानी अल्लाह के बंदे देखिए, हर खुशी और गम में लोग पीछे मकर कर रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं, तो ये आप लोगों को नहीं सुना रहे, बल्कि वहां जाके अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। बाहर आपके 12 हवारी मौजूद थे, वो शख्स वहां से निकला, पुलिस को खबर दी कि हजरत ईसा इधर मौजूद है। अब रोमन सिपाही थे और मोमबत्तियां और कैंडल्स लेके वहां आए हुए थे, उन्होंने कहा मैं अंदर जाऊंगा, मैं जाऊंगा। किस्सा मुख्तर यह कि जब वो हजरत ईसा को पकड़ने के लिए आए, अब एक शख्स की तो पहले से शक्ल बदल चुकी थी, असल ईसा कौन है, दूसरा कौन सा है, इसको नहीं पता चल सकता था। एन उस वक्त अल्लाह ताला ने उस कोठरी की छत को खुलवाया, चार फरिश्ते अंदर आए जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ऊपर लेके चले गए। और जब ऊपर लेके चले गए, उस शख्स जिसने गद्दारी की थी उसकी शक्ल हजरत ईसा की बदली गई। वो जो पकड़ने वाले आए थे वो उसको पकड़ कर ले गए, कहने लगे ये है हमारे बड़े, और इसको पकड़ कर बाखुदा के लफ्ज है, ये जो कहते हैं ना कि वो गॉड, ये जो जीसस गॉड का नजरिया, वो भी वहीं से शुरू हुआ। ओ गॉड ये क्या हो गया, तो उन्होंने कहा ये ईसा को गॉड कह। यानी आप हैरान होंगे कि बेवकूफी की हद तक रॉन्ग बेस के ऊपर हमेशा गलत अकायद की इमारत खुलती है। ये जो जीसस गॉड है, ये वो एक जुमला बिगड़ा हुआ है। जैसे आज हमारे यहाँ लोग कहते हैं ना कि नबी सल्लम का साया नहीं था, सुना भाई आपने जुमला, आपको पता है वो कौन सा जुमला है, कि बचपन से आपके सर से बाप का साया और दादी का, दादा का और माँ का चला गया, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं। उसको बाज लोगों ने ना समझी में कह दिया कि अल्लाह के नबी का साया जमीन पर नहीं पड़ता था, तो खुदा हुजारियां करते थे, सजदे करते थे, क्या वो अल्लाह के नबी की बेदबी थी, वो पाँव जमीन पे आते हैं, भी तुक्की बातें होती हैं, तो एग्जेजुरेशन के नाम पे था। बहरहाल कुरान ने तो खामोशी इख्तियार की, इस पे डिटेल्स आएंगी इंशाल्लाह सूरत मैदा में, लेकिन यहाँ कह के वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह बेहतरीन मकर करने वाला है। अब यहाँ ये सारी बात कर करा के जिसको हम समझे कि मौजू तो पूरा कर दिया गया, लेकिन अब अगली आयतों में सिर्फ उसका एक नक्शा हमारी आंखों के सामने है। क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं आयत 55। इस काल अल्लाहु, जब कहा अल्लाह ने, या ईसा, ए ईसा, इन्नी मुतवफी का वराफियू का इलैया, मैं आपको ले जाने वाला हूँ और अपनी तरफ उठा लेने वाला हूँ। ठीक है, ये दो लफ्ज अलग कर रहे हैं, मत मुतवफी का वराफियू का, इस पे बात होगी अभी इंशाल्लाह, आपको उठाने वाला हूँ, और व मुतहिरु का मिनल्लजीना कफरू, और आपको पाक करने वाला हूँ उन लोगों से जो काफिर हैं। कौन लोग थे अल्लजीना कफरू, वो यहूद जिन्होंने आपके कत्ल की कोशिश की। फिर क्या करूंगा, वजाइलुल्लज़ीन तबऊ का फौकल्लज़ीन कफरू इला यौमिल क़ियामा, और गालिब करने वाला हूँ उन लोगों को जिन्होंने आपकी पैरवी की, उन लोगों पर जिन्होंने कुफर किया क़यामत के दिन तक। यानी गालिब करने वाला हूँ इन लोगों को जो आपकी पैरवी करेंगे क़यामत तक, इन लोगों पर जो आपका इनकार करेंगे। यहाँ देखिए दूसरी दफ़ा लफ्ज़ अल्लज़ीना कफरू किसके लिए आया, यहूद, यानी क्रिश्चियंस को, हजरत ईसा के फॉलोअर्स को गालिब कर दूंगा ज्यूस पे। आप कहेंगे आज तो कहानी उलट है, उलट बिल्कुल नहीं है। आज मुट्ठी भर ज्यूस जो एक जगह पे जमा हो के पूरी दुनिया का कंट्रोल संभाले हुए, पीछे पोस्ट पे क्रिश्चियंस हैं। चंद बड़ी ताकतें अगर उनकी पुश्त ना ही छोड़ दें तो वो बिल्कुल डिमोलिश हो जाते हैं। तो आप देखेंगे कि तारीख में हमेशा क्रिश्चियन ज्यादा रहे ज्यूस की निस्बत, क्रिश्चियन का गलबा भी ज्यादा रहा। और जिस दौर में, जैसे कि आज बाहर हमें गलबा दूसरी कौम का दिख रहा है, तो उसके पीछे चंद लोगों की गलत बयानी और उनकी, जिसको आप कहना चाहिए कि पुश्त पनाह ही है, लेकिन ये हकीकत है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का गलबा, उनके साथियों का गलबा हमेशा दूसरी कौमों पे ज्यादा रहा। आज भी आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोअर जिस रिलीजन के हैं वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स हैं। ये अलग बात है कि उन्होंने अपने आप को गलत तौर पे पेश करा और क्या हालात हुए। तो बहरहाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे 30 या 33, 30 और 33 ईयर्स की एज में आसमान पे उठाए गए, और इसके बाद ईसाइयों के हाथों मुसलसल यहूद पर अजाब के कोड़े बरसते रहे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पे उठाए जाने के 40 साल के बाद 70 ईस्वी में टीटस, नाम सुना होगा आपने, रोमन था, इसके हाथों हैकले सुलेमानी गिरा दिया गया। यरूशलेम में तकरीबन 1,20,000 या 1,37,000 यहूदी मारे गए। अल्लाह ने कहा फौकल्लज़ीना कफरू, मैं गलबा दूंगा। गोया के 2,000 साल होने को हो गए कि इनका काबा गिरा हुआ है, और आज आपको कहता है कि एक दीवार है सिर्फ, वहां दीवार गिरिया कहते हैं उसको, और वहां जाके रोते हैं गिरियाजारी। आज इनके पास कुछ भी नहीं है। फिर हैकले सुलेमानी बुख्त नसर के हाथों 6 हिजरी में, यानी हजरत ईसा से 600 साल पहले जो था वक्त, उसके बाद ये मिसमार किया गया, यरूशलेम की ईंट से ईंट बजाई गई। यानी इनकी हिस्ट्री को मुसलमानों की हिस्ट्री से मुख्तलिफ नहीं है। हमारे सामने तो आज है ना, जो हम देखते हैं कि दुनिया में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, लाखों मारे जाते हैं। आप हिस्ट्री पढ़िए, लाखों की तादाद में यहूदी मारे जाते थे, और हिटलर ने जो किया वो आप सबको याद होगा, करीब की बात है। लाखों लोगों को कैदी बना के बाबुल में ले गए, वहां जो हमने पीछे हारूत मारूत तालूत और जालूत के किस्से में पढ़ा। तो कौमों का यही हाल होता है, चाहे वो कल के ज्यू क्रिश्चियन हो या आज के मुसलमान हो, जब लोग अपनी किताबों को नहीं मानते और नबी की कदर नहीं की। देखिए, नबी दुनिया में अल्लाह का पैगाम लेके आता है, जब लोग उसको कत्ल करें तो क्या अल्लाह उन कौमों को छोड़ेगा? यही हुआ। फिर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के हाथों वापस आए, जो पीछे हम किस्सा पढ़ चुके हैं, और दोबारा इन्होंने अपना हैकल तामीर किया जो 70 में गिरा दिया गया था। फिर इनको फलस्तीन से निकाल दी गया, पूरी दुनिया में बिखर गए। रशिया को देखिए, इंडिया को देखिए, मिस्र, यूरोप, ये पूरी दुनिया में उस वक्त फैले। इनका कौन सा दौर कहते हैं? इंतशार का दौर कहते हैं। डायस्फोरा का नाम आप लोगों ने हिस्ट्री में सुना होगा। ये जो ज्यूज मदीना में आ गए थे, क्यों आए थे? कभी आपने सोची ये बात? मदीना में क्या था जब ये इनका ये इंतशार हुआ था ना, डायस्फोरा वाला? तो उस वक्त ये पूरी दुनिया में कि जाओ जिधर जाना है माइग्रेट कर जाओ। तो जो मजहबी तबका था ना इनका, जिनको पता था कि आखिरी नबी आना है और वो तैबा से आना है, तो ये सोच से मदीना आ गए थे कि अब हालात बन गए कि वो आखिरी नबी आए तो हम उसके साथ मिलके पूरी दुनिया से बदला लेंगे। ये नहीं पता था कि बनी इसराइल की बजाय बनी इस्माइल से आएगा। तो वो उस नबी के इंतजार में मदीना गए, लेकिन आप देखिए जब नबी आए तो उन्होंने उनके साथ क्या किया। और अखीर आपको पता है कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में यरूशलम मुसलमानों को मिला। हजरत उमर ने उस वक्त कहा, ये ओपन सिटी है, आओ सब आ जाओ, यहूदी ईसाई मुसलमान सब आ सकते हो। उस मौके पे पहली दफा इनको फिर बैतुल मकदस के इलाके में आने की इजाजत मिली। लेकिन हाल क्या है कि जब इजाजत मिलती है ना, तो फिर लोग उसको मिस यूज करते हैं। फिर वहां मुआहदे हुए और यहूद को वहां आबाद होने के लिए जगह लेने की इजाजत नहीं थी। ये एक दौर गुजरे बैतुल मकदस की हिस्ट्री में आप देखें। लेकिन फिर हजरत उमर से लेके खिलाफत उस्मानिया यानी जो ऑटमन एम्पायर्स थी, तब तक इस माहदे पे अमल होता रहा। यहूद को इजाजत नहीं थी फलस्तीन में रहने की, जा सकते थे, रह नहीं सकते थे। लेकिन दौरे उस्मानी में फिर खुलफा को बड़ी बड़ी रिश्वतें दी, लोगों ने नहीं ली क्योंकि दौर अच्छा था। फिर साजिशें की, साजिश के तहत फिर खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हुआ, ऑटमन एम्पायर खत्म हुई, क्योंकि उनको पता था कि जब तक मुसलमानों में खिलाफत है बात नहीं बनेगी, ये फलस्तीन में नहीं आएंगे। और अखीर क्या हुआ, 1917, ये कल की बात है, आप देखिए पीछे जाके देखें तो एक सदी के करीब की बात है। उस वक्त फिर उन्होंने ब्रिटिश वजीर के हाथों, बेलफोर शायद उसका नाम था, उसके जरिए बेलफोर डिक्लेरेशन मंजूर करवाया। फिर इनको हक दिया कि वो फलस्तीन में आए, जायदादें खरीदें, आबाद हों, और 31 साल में देखे उन्होंने अपनी रियासत बना ली। कभी हम सोचे ना तो मेरा ख्याल है कि कभी भी सुकून से ना सो सकें। इतने थोड़े वक्त में जैसे दीमक अपना काम करती है ना, उस तरह ये काम करती, इतने इंटेलेक्चुअल, सिर्फ 31 ईयर्स में इन्होंने अपनी उस रियासत में वहां रह के अब सबको निकाल दी। एक हल्का सा रास्ता आप दें, बाकी ये बना लेंगे, इतनी समझदार कौम है। लेकिन देखिए कि इन्होंने अपनी समझदारी किधर रखी है। आपको पता है कि पूरी दुनिया में इस वक्त आबादी कितनी है यहूद की? सिर्फ 1.5 करोड़। जी, मुसलमान कितने हैं आज? 6 बिलियन से भी शायद ज्यादा है, लेकिन खसो खाशाक की तरह बिस रहे हैं। पूरी मईशत इनके हाथ में, दुनिया का बैंकिंग सिस्टम इनके हाथ में, गोल्ड इनके हाथ में, सियासत इनके हाथ में, और सब कुछ इनके हाथ में। और आप देख लीजिए कि सब मौजूद है, लेकिन पीछे ईसाई इनकी मदद कर रहे हैं, बड़ी कुव्वत है। अगर आज वो मदद ना करें तो अरब एक दिन में इस छोटी सी रियासत को उठा के रख दे, क्योंकि चारों तरफ मुसलमानों की हुकूमतें हैं, लेकिन वो उनके जर खरीद बने बैठे। तो सोचने की बात है कि ये सब क्या है। हजरत ईसा के दौर से ये कहानी चलती आई, और इन्होंने जब उनको मारने की कोशिश की, अल्लाह कहते हैं कि मैंने कहा, ईसा तुम आ जाओ मेरी तरफ, राफी उकवा इलैया। इस पे भी हम बात कर लेते हैं, आखिरी सा पढ़ के आयत का, सुम्मा इलैया मरजीउकुम, फिर मेरी ही तरफ पलटना है, फहकुमु बैनकुम, फिर मैं फैसले करूंगा तुम्हारे दरमियान, फी मकुन तुम फी ही तख्तलिफून, उस मामले में जिसमें तुम इख्तलाफ करते थे। यानी अल्लाह ताला कहते हैं ये 4 दिन का खेल है दुनिया का, खेल लो, उसके बाद फिर तुम्हारे फैसले मैं कर दूंगा। क्या फैसला अल्लाह करेगा, हम बात करेंगे अभी हजरत ईसा के इस आसमान पे उठाए जाने पे, लेकिन टॉपिक को एक साथ लेके चलते हैं। क्या फैसला होगा? आयत 56, फअम्मल्लज़ीना कफरू फअज़िबुहुम अज़ाबन शदीदन फिद दुनिया वल आखिरा। तो जो लोग कुफर का तरीका इख्तियार करें, मैं इनको सख्त अजाब दूंगा। कौन मुराद है काफिर? तीसरी दफा आ गया, ठीक है, अजाब दूंगा शदीद, दुनिया में भी और आखरत में भी। वमा लहुम मिन नासिरीन, और नहीं होंगे इनके कोई मददगार। ये तो अल्लाह का फैसला है काफिरों के लिए। और आयत 57, वा अम्मल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, और जो लोग ईमान लाने के बाद नेक अमल करेंगे, फयुवफ्फीहिम उजूरहुम, बस वो इनको इनके अजर पूरे के पूरे देगा। यहां भी अब लफ्ज़ फयुवफ्फीहिम को नोट कर लें क्योंकि हम इस पे बात करेंगे बाद में। वल्लाहु ला युहिब्बुज़्ज़ालिमीन, अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। तो गोया के हजरत ईसा को कत्ल करने की इन्होंने कोशिश की, अल्लाह ने उस कोशिश को नाकाम किया, और जिन लोगों ने इनका साथ दिया अल्लाह ताला ने उनको गलबा दिया क़यामत तक, और जिन लोगों ने इनके कत्ल की कोशिशें की, जिन्होंने इनको ख़त्म करना चाहा, अल्लाह सुब्हान ताला ने उनको ख़त्म किया। और कल क़यामत के दिन भी यही होगा, कुफर वालों के लिए अजाब और ईमान और अमल साले वालों के पूरे अजर, क्योंकि अल्लाह ताला किसी पे जुल्म नहीं करता। और इस पूरे वाक्य को अल्लाह ने सुनाया नबी को, राइट, कुरान में आ गया ना, आयत 58 में अल्लाह ताला कहते हैं, ज़ालिक नतलूहु अलैक मिनल आयात, ये हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं। आयात हैं कौन सी? अल्लाह की, व जिक्रिल हकीम, और पुर हिकमत जादहानी में से, यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये आयात और जिक्र हकीम नबी सल्लम को पढ़कर सुना रहे थे, और अल्लाह के नबी ने फिर हमें सुनाया। तो ये था हजरत ईसा को ऊपर उठाए जाने का वाकया। हम थोड़ी सी इस पर मजीद बात कर लेते हैं।